الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نساء کی آیت 15 سے آج ہم شروع کریں گے واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او اجاجر اللہ لہن سبیلا. تم میں سے وہ خواتین, تمہاری عورتوں میں سے وہ جو فحاشی کا کام کرتی ہیں, تو ان کے خلاف چار گواہ فراہم کر لو. اگر چار گواہ سچے مل جائیں تو پھر ان کو ان کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو آ لے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. یہ آیت بھی قرآن کی مشکل آیتوں میں سے ہے. اس میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے, اور پھر ان کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے کہ مرنے تک گھروں میں بند کر دینے کی بات ہو رہی ہے. استاد گرامی نے اس مسئلے کو جس طرح سے دیکھا ہے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. کچھ لوگ جو ہیں وہ لیزبین والے معاملے کی طرف گئے ہیں, اس طرح کی چیزیں, تو لیکن اگلی جو آیت ہے اس میں پھر وہ ہوموسیکشل کے دوسرے مردانہ گیز کی طرف گئے ہیں. دونوں صورتوں میں سزا بہت مختلف ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو استاد کی رائے ہے وہ مجھے زیادہ قرآن کے الفاظ کے قریب لگتی ہے. استاد جیسے میں نے ترجمے میں واضح کیا ہے کہ استاد گرامی اس سے مطلب لیتے ہیں وہ جو اس معاملے کا بدکاری کا پیشہ کرتی ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. استاد کے حق میں جو ہے وہ کئی چیزیں موجود ہیں. یہ کہ صرف عورتوں کا ذکر ہو رہا, دوسرا یہ کہ اس میں چار گواہوں کو طلب کیا گیا ہے, اور تیسرا یہ کہ اس میں سزا کافی بڑی دی گئی ہے. تو یہ تین ان کے حق میں جاتے ہیں کہ یہ جرم سادہ زنا سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے, سادہ زنا کے جرم سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے, یا فاحشہ سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے, خواہ وہ لیزبین کی ٹائپ کا ہو یا دوسری قسم کا. تو ہوموسیکشلز کا دونوں طرف کر لیجئے, یا تو دونوں میں سزا ایک ہونی چاہیے تھی اگر دونوں ہی خواتین یا مرد دونوں کسی ہوموسیکشوالٹی کے ایکٹ میں مبتلا ہیں تو سزا پھر ایک جیسی ہونی چاہیے تھی. عورتوں کو سزا کیوں زیادہ دی گئی ہے, یہ جو عام رائے ہے اس میں حل نہیں ہوتا. تو استاد کہتے ہیں کہ یہ وہ خواتین ہیں جو پیشہ ور ہیں, تو انہوں نے اڈے بنا رکھے ہیں, تو بس عدالت کو چار گواہوں کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ کام کرتی ہیں. اگر وہ یہ کام کرتی ہیں تو بس پھر ان کو ان کے گھروں میں بند کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. یہ بالکل واضح صاف ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا. سزا کی یہ نیچر بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے, اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے. یہ دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں. تو جو خواتین یہ کام کرتی ہیں ان کے بارے میں محلے میں کوئی انہوں نے اڈا بنا رکھا ہے تو بس چار گواہ چاہیے ہوں گے. عام زنا کے اوپر چار گواہ ملنے مشکل ہوتے ہیں, وہ بھی انہی کے لیے ہیں, یا تہمت والے کیس میں ہیں. یعنی ایک آدمی پاک دامن عورت پر تہمت لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چار گواہ لے کر آؤ گے, نہیں لا سکو گے تو تمہیں مار پڑے گی, ٹھیک ہے. تو یہ جو کیس ہے اس میں آرام سے چار گواہ مل جاتے ہیں, سب کو پتہ ہوتا ہے محلے والوں کو کہ یہاں یہ کام ہوتا ہے, تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ آیت بالکل صاف ہو جاتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا حل اور کوئی نہیں ہے. استاد نے اس میں بہت عمدگی سے بات کو پکڑا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے, ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہوں اور خوشی کا باعث ہو. تو یہ مشکل آیتوں میں سے ہے, اس لیے داد دینی پڑتی ہے استاد کو, انہوں نے بہت اچھا حل کیا ہے. تو اب جس میں جو चीज़ें हैं वो मैंने बता दी जो उस्ताद के हक़ में बातें जाती हैं, सिर्फ ख़वातीन का जिक्र, सिर्फ और चार गवाहों का जिक्र, अगले में चार गवाहों का जिक्र नहीं, अगला जो केस आ रहा है, और दूसरा ये कि सज़ा काफ़ी सख्त है कि मरने तक घरों में बंद कर दिया जाए, औ यजअलुल्लाहुन्ना सबीला में, या अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दें, यानी या उनके लिए मौत का इंतज़ार किया जाए घरों में बंद करके, या अल्लाह ताला कोई और सज़ा दे दे या कोई और रास्ता निकाल दे। ये जो रास्ता निकालने का मामला हुआ उसमें हदीसों में एक रहनुमाई की गई है, वो मैं वाज़े कर देता हूँ। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा कि देखो मुझे अल्लाह ताला ने रास्ता बता दिया है, मुझसे लो, अल्लाह ने रास्ता बता दिया है, अब रास्ता ये है कि इन ख़वातीन को अगर वो शादीशुदा हैं तो रजम किया जाएगा और 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर वो कुंवारी हैं तो 100 कोड़े मारे जाएंगे और जलावतन किया जाएगा। आपने जो रास्ता निकाला वो ये है। ये जो जलावतनी और रजम है ये सूरह मायदा में जाकर वाज़ह होगी, ये हिराबा की सज़ा है। तो आपने सूरह नूर में 100 कोड़ों वाली सज़ा और सूरह मायदा की हिराबा वाली सज़ा, फसाद फिल अर्ज़ वाली सज़ा, दोनों को इकट्ठा कर दिया है इन ख़वातीन के लिए। तो मतलब ये हुआ कि नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़हम के मुताबिक, जो उन्होंने जो हम तक पहुँचा है उसके मुताबिक, जो बदकारी का काम करने वाली ख़वातीन हैं वो अल्लाह की निगाह में हिराबा की या फसाद फिलर्स की मुजरम है। ठीक है, तो ये अब दो सज़ाएं इनके लिए इकट्ठी कर दी गई, जिना की वजह से जिना वाली सज़ा और फसाद की वजह से फसाद वाली सज़ा, और नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम अदालती तरीके के मुताबिक बड़ी सज़ा नाफिस की, छोटी छोड़ दी गई कि 100 कोड़े नहीं मारे गए लेकिन रजम कर दिया गया, 100 कोड़े नहीं मारे गए लेकिन जलावतन कर दिया गया। तो ये फितरी सी बात है, जब बड़ी सज़ा मौजूद हो तो छोटी ख़त्म कर दी जाती है बिलमोम। तो अब ये जो आयत थी दोबारा इसको देखिए, वल्लाती यातीन अल्फाहिशा, जो बदकारी का काम करती हैं तुम्हारी औरतों में से, ये मुसलमानों की तरफ इशारा है कि अब तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे इलाके में जो ख़वातीन ये काम करती हैं, तो फस्तशहदु अलैहिन अरबात मिनकुम, तो अपने में से 4 गवाह लेकर आओ इनके ऊपर, गवाह तलब करो कि भाई कोई है मोहल्ले में बताने वाला कि वाकई ऐसा काम करती हैं, तो अगर 4 गवाह मिल जाते हैं मोहल्ले में से, फ़ाइन शाहिदु फ़ाम सिकु हन्ना फिल बयूत, तो उनको घरों में बंद कर दो, हत्ता यतवफ़ा हन्नल मौत, यहाँ तक कि उनको मौत ले जाए, आओ यजअलुल्लाह लहुन्ना सबीला, या अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे। तो अल्लाह ताला ने रास्ता ये निकाला कि उसमें हदीसों के मुताबिक के रजम और जलावतनी की सज़ा मुकर्रर कर दी गई। तो ये हो गया एक केस, इसमें अब सादा मामला नहीं रहा बल्कि वो ख़वातीन ज़ेर बहस हैं जो ये अमल करती हैं। वल्लज़ाने यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और जो दो ऐसा करें तो उनको अज़ियत दो, फ़ाइन ताबा, तो फिर अगर वो तौबा कर लें, वा असलहा, और अपनी इसलाह कर लें, फ़आरिज़ू अनहुमा, तो उन दोनों से बस गुरेज़ करो, इन्नल्लाह काना तव्वाबन रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। अब ये जो दोनों हैं जिन लोगों ने ऊपर ख़वातीन को लिया कि वो बाहमी तौर पर ऐसा करती हैं, उन्होंने फिर यहाँ मर्दों को बाहमी तौर पर लिया, लेकिन जुर्म एक ही है, सज़ा औरतों को बहुत सख्त है और मर्दों के लिए फिर बहुत नरम है, जो कुछ समझ नहीं आती कि उसकी क्या हिकमत है। तो इसलिए उस्ताद की राय में यहाँ पर जब हम कहते हैं उन दोनों ने जना किया तो इसका क्या मतलब होता है, एक मर्द और एक औरत, तो उन्होंने यही लिया है कि एक सादा गुनाह है जो जना है, और एक मामला हो रहा है पेशा के तौर पर, दोनों को फ़र्क किया गया है। तो यहाँ पर भी उस्ताद की राय बहुत उम्दा है, आयतों को बिल्कुल साफ कर देती है। तो जो दो इस फहाशी का इरतकाब करें, जना का इरतकाब करें, तो उनको अजियत दो। बाद में फ़ाज़ू हुमा जो है यही बाद में 100 कोड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया, जो सूरह नूर में जाकर हुक्म आएगा। यहाँ बस शुरू में इतना ही कहा गया था कि उनको लगाओ, फेंटी लगा दो, जूते लगा दो, डंडे मार लो, या लोगों ने बहुत मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने कहा है कि زبان اور ہاتھ سے اذیت دی جا سکتی ہے فاضوں میں، کیونکہ اذیت دونوں ذہنی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ہوتی ہے، تو مارا بھی جا سکتا ہے، یعنی مارا پیٹنا، قتل کرنا مطلب نہیں، مارنا پیٹنا بس، اور اذیت دینا زبان کے اعتبار سے، لیکن سورہ نور نے بتا دیا کہ صرف جسمانی سزا دی جائے گی۔ تو آپ فرمایا کہ جو دو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، تو پھر ان کو سزا کیا دی جائے گی؟ اذیت دی جائے گی۔ یہ چونکہ نرم حکم ہے، ابھی شروع میں عربوں کے ہاں یہ چیز عام تھی، اس لیے شروع میں نرم سزا دی گئی، بعد میں سخت کر دی گئی یا متعین کر دی گئی۔ نرم تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں حد ہی کوئی متعین نہیں کی گئی، ہو سکتا ہے کہ 100 کوڑوں جتنی اذیت کے بجائے 200 کوڑ جتنی اذیت ہو جائے مارنے پیٹنے میں، تو ایک لحاظ سے سختی بھی ہے اور ایک لحاظ سے اس میں سہولت بھی ہے کہ متعین کر دیا کہ بس 100 کوڑے مارنے۔ فائن تابا و اسلحہ، تو اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی تمہاری ان کو ٹھکائی کرنے کے بعد وہ توبہ کر لیں، وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کا مطلب ہے کہ اپنا یہ جرم چھوڑ دیں، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ لیں، اور اسلحہ کا مطلب ہے آئندہ ارادہ کریں کہ ایسا نہیں کریں گے۔ فَآرِزُ عَنْهُمَا، تو اگر وہ ایسا کر لیں، ایسی حرکت دوبارہ نہ کریں، تو بس تم نے سزا دے دی، کافی ہے، باقی چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ہی پڑے رہو اور ان کے لیے۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ تو یہ اس کے اندر چیز جو ہے وہ واضح رہنی چاہیے کہ اب چونکہ فائن توبہ کا ذکر آ گیا، تو پھر یہ بتانا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی توبہ قبول کرتے ہیں، تو تم بھی ان کے ساتھ اعراض کرو، ان کو پیچھے نہ پڑ جانا کہ اب انہوں نے ایک جرم کر لیا ہے تو ہر روز ہی جوتے مار رہے ہو، ہر روز ہی باتیں لگا رہے ہو، نہیں، بس کافی ہے، سزا دے دی۔ اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تو چھوڑ دو، دوبارہ جرم کریں گے تو پھر پکڑے جائیں گے، لیکن اگر وہ جرم دوبارہ نہیں کر رہے تو بس تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تواب ہیں اور رحیم ہیں۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب دو صفتیں اکٹھی آتی ہیں تو ان کے اندر باہمی ایک تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق جو ہے وہ واضح رہنا چاہیے یہاں پر، کہ رحمت جو ہے وہ نقمت، یعنی رحمت اور شفقت اور سزا دونوں کو شامل ہوتی ہے، یہ واضح رہنا چاہیے۔ عربوں کے ہاں اس کا تصور واضح تھا، قرآن مجید میں اس کا تصور واضح ہے کہ رحمت کے اندر صرف شفقت نہیں ہوتی، سزا بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان جیسا ملک ہے، اس میں اگر مجرم دندراتے پھریں اور وہ جس کا مال لوٹ لیں، جس کی عزت لوٹ لیں، جس کا بھائی بہن کو مار ڈالیں، ہم ان کو کوئی سزا نہ دیں لیکن ان کو کچھ داد رسی کر دیں، کوئی بات نہیں، حوصلہ کرو، یہ لو تمہیں ہم گھر دے دیتے ہیں اس کی جگہ پر، یہ لو تمہیں دولت دے دیتے ہیں، تو کیا یہ رحمت ہوگی جب تک کہ ان کو سزا نہ ملے؟ تو مجرموں کو سزا ملنا رحمت کا حصہ ہے، لیکن اگر مجرم ایسا ہو کہ رعایت کی جا سکے تو اس کو معاف کرنا بھی رحمت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجرم کو سزا دینا یہ بھی رحمت کا حصہ ہے، اور مجرم کو معاف کر دینا یہ بھی رحمت کا حصہ ہے۔ اب جو تواب الرحیم کے اندر یہ دونوں پہلو تھے، رحمت کے تقاضے سے جن کی توبہ قبول ہونی چاہیے انہی کی ہوگی، اور جن کی قبول نہیں ہونی چاہیے ان کی نہیں ہوگی، وہ آگے اس کا قانون بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کن کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کن کی قبول ہو جائے گی۔ تو اگلی 2-3 آیتیں وہ تواب الرحیمہ کی گویا تفسیر بن گئی ہیں۔ تو دوبارہ بتا دوں کہ رحمت دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، شفقت کا بھی، معافی کا بھی، اور سزا کا بھی، لیکن رحمت اگر چاہے گی تو توبہ قبول کی جائے گی، رحمت کا اصول، عدل کا اصول اگر نہیں چاہے گا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب وہ کیا قانون ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ، ہی صرف اللہ پر لازم توبہ کن کی ہے؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کے ساتھ۔ جہالت دونوں معنی میں آتا ہے، جذبات میں پھنس کر، جذبات میں بہہ کر، یا بے علمی میں، بے خیالی میں۔ تو توبہ صرف ان کی ہے अल्लाह के ऊपर लाजम तौबा उन्हीं की है जो गुनाह कर लेते हैं जहालत के तरीके पर, सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर जैसे ही उनके जज्बात ठंडे पड़े या जैसे ही उनकी बेइल्मी दूर हो, ठीक है, मुझे पता ही नहीं था कि ये गुनाह गुनाह है, या किसी बेख्याली में सोते हुए कर लिया, कुछ कर लिया, तो जैसे ही मुझे होश आए, खा जज्बात के निकल जाने से या इल्म के आ जाने से, तो मैंने फौरन तौबा कर ली। फ़ाउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल करना लाजम है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला बहुत इल्म वाले और हिकमत वाले हैं। तो पहला ज़ाब्ता क्या होगा तवाबुर रहीम के तहत? पहला ज़ाब्ता ये होगा कि मैं कोई गुनाह जज्बात में आकर कर लूँ या बेइल्मी में कर लूँ, तो जैसे ही मेरा इल्म मुझे हासिल हो या मैं जज्बात, मेरे इंतकाम का जज्बा था, जाके मार आया एक आदमी को, तो अब जज्बात ठंडे भी तो पड़ेंगे ना, तो जैसे ही जज्बात ठंडे पड़े, तो जैसे ही मैं उस कैफियत से निकला, तो मैं अगर फौरन तौबा कर लूँ, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस तौबा को कबूल करना मेरे ऊपर लाजम है। दो शर्तें हैं, प्लानिंग करके जुर्म नहीं किया, जानबूझ कर जुर्म नहीं किया, जहालत से हुआ। पहली शर्त यह है, जहालत के दोनों मानी बता दिए, जज्बात का गलबा है वैसे, लेकिन बेल में भी शामिल है। तो पहली शर्त यह है कि जिसने प्लानिंग करके गुनाह नहीं किया, या बेइल्मी में किया या जज्बात में बहकर किसी गुस्से की कैफियत में, किसी कैफियत में कर दिया है, तो फिर फौरन तौबा कर ली, जैसे ही जज्बात ठंडे हुए, जैसे ही वो काम किया, वो मैं क्या कर बैठा हूँ, फौरन तौबा की, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं, लाजमन करेंगे। तो दूसरी शर्त क्या है? फौरन तौबा करना, जज्बात से निकलते ही, गुनाह से फारग होते ही फौरन तौबा करना। तो ये दो शर्तें, अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएंगी, तो तौबा लाजमन कबूल की जाएगी। ये तवाब का अमल होगा, इसलिए कि इस आदमी की जो जुर्म है वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जज्बात में बह गया था, अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। बंदा मोमिन जज्बात में भी नहीं बहता, लेकिन बहरहाल किसी वक्त बहुत शिद्दत के चीज़ हो सकती है कोई, तो वो कर बैठा हो, तो फिर तौबा कर ले तो माफ़ हो जाएगा, अगर फौरी तौर पर तौबा करेगा। तो दो चीज़ें नोट रखने की हैं यहाँ पर, जहालत और मिन करीब, फौरन तौबा कर लेना, और जहालत में गुनाह किया होगा या जज्बात में आकर या बेइल्मी में। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ये जो सारा कानून है, ये दो बातों पर खड़ा है, एक सिफत अलीम पर और एक सिफत हिकमत पर। यहाँ पर भी दो सिफतें अल्लाह ताला की इकट्ठी आई हैं। मुझसे किसी ने पूछा था कई इसी सवाल, इसी दरस में गालबन या किसी और जगह, कि अल्लाह ताला अपनी तारीफें बहुत करते हैं, पसंद करते हैं तारीफ। ये तारीफें नहीं हैं, ये तारुफ, तारुफ और तारीफ में बड़ा फ़र्क होता है। मैं मिसाल दिया करता हूँ कि मैं, मेरा कोई दोस्त हमारे घर जाना चाहे, तो मैं उसे कहूँ कि मेरे वालिद साहब जरा सख्त मिजाज हैं, शोर पसंद नहीं करते, तो वो गंद वगैरह पड़ा हुआ पसंद नहीं करते, तो तुमने ये दोनों काम नहीं करना है, शोर नहीं करना और चीज़ें नहीं बखेरनी है, वरना घर से निकाल दिए जाएंगे, मार पड़ेगी। तो ये मैं वालिद साहब का जो तारुफ करा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे घर में जाकर कैसे रहना है, वालिद साहब के घर में कैसे रहना है, ऐसे ही अल्लाह ताला तारुफ कराते हैं अपना, कि मेरी दुनिया में कैसे रहना है तुम लोगों ने। तो अलीम के मानी है जानने वाला। अब ये इन लोगों के लिए जो तौबा कर रहे हैं, उनके लिए तसल्ली भी है और धमकी भी है, कि जो लोग प्लानिंग करके गुनाह करेंगे, तो ये ख्याल ना करें कि अल्लाह ताला को धोखा दे लेंगे, जज्बात तारी हो गए थे जी, ये हो गया था, वो हो गया, नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखते हैं, तो वो तुम्हारी जहालत को भी पहचानेंगे, और ये भी इल्म रखते हैं कि तुमने फौरी तौबा किए या टालते रहे हो, दोनों को अल्लाह ताला जानते हैं। और ये जो मैं कानून दे रहा हूँ, ये भी इल्म की बुनियाद पर दे रहा हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि इंसान जज्बात का शिकार होकर गुनाह कर बैठते हैं, इसलिए मैं अपने इस इल्म की बुनियाद पर तुम्हारे लिए ये नरमी का कानून रख रहा हूँ कि अगर कोई गुनाह कर बैठोगे जज्बात में आकर, تو میں نے توبہ کا قانون رکھا ہوا ہے. خود توبہ کا قانون ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں ہیں. حکمت, حکمت کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ میں جذبات میں بہہ جانے کی وجہ سے یا بے علمی کے باوجود بھی سزا دے دوں, یہ میری حکمت کے خلاف ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں پہلو یہاں پر واضح رہنا چاہیے. تو اب پہلا قانون کا حصہ کیا ہو گیا کہ توبہ اللہ پر ان کی قبول کرنا لازم ہے جو پہلی شرط جہالت میں کوئی برائی کر بیٹھے, اور دوسری شرط کہ پھر فوراً جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑے, جیسے علم بیدار ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر یہ توبہ قبول کریں گے. آگے بتایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, اور ان کی توبہ ہرگز نہیں ہے جو گناہوں کو کرتے ہیں. اور حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, اور یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. قال, پھر وہ کہتا ہے انی تبت الان, میں اب توبہ کرتا ہوں, تو فرمایا کہ ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. یعنی گناہ کر لیا اور گناہ کرتے رہے موت تک, موت تک گناہ کرتے رہے, تو موت کے وقت جب فرشتے دکھائی دیے تو جب میں توبہ کرتا ہوں, جیسے فرعون کی توبہ کا ذکر آیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب اللہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الان اب تو کوئی فائدہ نہیں. تو مرنے سے پہلے, موت کے آثار دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کرنا ضروری ہوگا. موت کے آثار پہ توبہ کرنے والے کو توبہ قبول نہیں ہوگی. اب ایک اور چیز بتا دی, وللذین یموتون وہم کفار, اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو مریں اور وہ کافر ہوں. یعنی ایک آدمی گناہ کرتا رہا مسلسل ساری زندگی اور بالکل ٹھیک موت کے آثار دیکھ کر اس نے توبہ کی, قبول نہیں کی جائے گی. دوسرا وہ آدمی جس نے توبہ کی ہی نہیں اور وہ اسی حالت کفر کی حالت میں ہی مر گیا, اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لہم عذاب علیما, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اب دوبارہ پیچھے دیکھیے, پہلا ضابطہ یہ کہ توبہ گناہ اگر جذبات میں آ کر یا بے علمی میں ہو گیا ہے تو جیسے ہی جذبات ٹھنڈے پڑیں یا علم بیدار ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والے کی توبہ اللہ تعالیٰ لازماً قبول کریں گے. اور اگر کوئی آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور موت کے آثار دیکھ کر اس نے توبہ کی تو توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی, لازماً رد کر دی جائے گی. تو تواب الرحیم کے جو میں نے بتایا کہ رحمت تقاضا کرے گی تو قبول ہوگی, رحمت تقاضا نہیں کرے گی تو قبول نہیں ہوگی, وہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے دو کیسز ہیں, ایک یہ کہ گناہ کرتا رہا یعنی کافر نہیں ہے گناہگار ہے لیکن موت کے آثار دیکھ کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے, اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو کفر کی حالت ہی میں مر گیا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. ان دونوں کے لیے دردناک عذاب. اب بیچ میں دو کیسز ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے. ایک کیس یہ ہے کہ جس نے پلاننگ سے جرم کیا اور پھر توبہ کی, خاموشی ہے, پورے قرآن میں خاموشی ہے, ٹھیک ہے. یعنی پورا پلان کر کے گناہ کیا, جذبات نہیں تھے, کچھ نہیں تھا, اگر تھے بھی تو لیکن کتنی دیر رہیں گے, لیکن اس نے پورا اس کا کوئی اس کے مثلا توہین کی اور اگلے چھ مہینے وہ پلاننگ کرتا رہا کہ میں نے توہین کا بدلہ کیسے لینا. تو پلاننگ کر کے جس نے گناہ کیا اور توبہ کر لی فوراً کر لی, قرآن مجید خاموش. دوسرا یہ کہ اس نے گناہ تو جہالت ہی سے کیا لیکن توبہ ٹالتا رہا اور چھ مہینے بعد, سال بعد, دو سال بعد, دس سال بعد توبہ کی, موت سے پہلے پہلے ہی, اس کے بارے میں بھی خاموشی اختیار کی گئی. اس میں مولانا اسلائی نے جملہ اچھا لکھا ہے کہ اس میں خوف بھی ہے اور امید بھی ہے اور اسی کا قائم رہنا ضروری ہے. تو خوف اور امید دونوں قائم رکھی گئی ہیں تاکہ ہم توبہ زیادہ سے زیادہ کرتے رہیں. تو یہ اب توبہ کا قانون ہے. توبہ کا قانون کیوں دیا گیا ہے؟ वो जना करने वालों का मसला ज़ेर बहस आ गया था कि अगर वो जना कर लें और फिर तौबा कर लें तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेगा। तो इस मौके की मुनासबत से हमें तौबा का कानून भी मिल गया और अल्लाह ताला की तरफ से एक खुशखबरी भी मिल गई कि वो लोग जो प्लानिंग करके गुनाह नहीं करते उनके लिए एक आसानी है अगर वो फौरन तौबा कर लेते। अब इसमें जुज़वी सवालात बहुत ज़्यादा हैं कि जो आदमी बार बार गुनाह कर रहा है उसका केस भी खामोश है यहाँ पर, कि जज्बा तारी हुआ, गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, फिर जज्बा तारी हुआ, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, तो बस उसी खौफ और उम्मीद के साथ इनका मामला भी, उम्मीद यही है कि तौबा कबूल हो जाएगी, लेकिन बहरहाल खुदा का फैसला कल क़यामत वाले दिन ही सामने आएगा। आगे जो मज़मून चल रहा था ख़वातीन के हवाले से यतीमों का और फिर वरासत का कि क्या क्या हिस्से दिए जाएंगे, उससे अगला एक और अरबों की जो रस्म थी उसको उठा लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसा करहन वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबाज़ मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यनतिन। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती वरासत में हासिल करो। तुम औरतों को ज़बरदस्ती वरासत में हासिल करो। बाज़ लोगों ने ये भी, चूँकि आयत एक लिहाज से लोगों के लिए मुश्किल का बायस बनी, कि तारिसुन निसा का जो खाली इतना अगर जुमला है कि तारिसुन निसा, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम औरतों के वारिस ना बनो। ठीक है, औरतों के वारिस ना बनो, यानी पीछे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कोई औरत फौत हो जाए तब भी उसके हिस्से तकसीम होंगे वरासत के, और मर्द फौत हो जाए तब भी, तब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम औरत के वारिस ना बनो। करहन ज़बरदस्ती, तो ज़बरदस्ती किसका वारिस बना जा सकता है? तो लोगों ने इस मानी में लिया, लेकिन बहरहाल सादा मतलब जो अक्सर मुफस्सरीन की राय है और सहाबा में से भी अक्सर की राय यही है, वो ये है कि औरतों को ज़बरदस्ती अपनी विरासत बना लेना, अपने हिस्से में ले लेना। अरबों के यहाँ दो तीन रस्में थीं। एक रस्म यह थी कि वालिद की जो दूसरी बीवियाँ होती थी, एक तो अपनी माँ है लेकिन जो सौतेली माएँ हैं उनको विरासत में तकसीम कर लेते थे, कि बच्चों में बांट दी जाती थी। इसी तरह एक रस्म यह थी कि मैयत फौत हो गई है, उसकी बेवा बैठी हुई है, तो किसी भी अजीज़ ने आकर अपनी चादर उसके ऊपर डाल दी है, उस खातून के ऊपर, तो बस अब वो इद्दत गुजरने के बाद उसकी बीवी करार पा जाएगी, उसके साथ शादी हो जाएगी उसकी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं जो अरबों के यहाँ थीं, तो उन सब को अल्लाह ताला ने यहाँ एक ही जुमले में ख़त्म कर दिया है कि औरतों को समान नहीं समझो, वो इंसान है और उनकी आज़ादी है, तो उनको ज़बरदस्ती विरासत में तकसीम ना की। यह ज़ाहिर है कि कबायली निज़ाम में, समाजी निज़ाम में, हमारे मुल्क में भी देखिए कि जो समाज होता है वो बहुत ताकतवर होता है, तो हमारे यहाँ जिस भी औरत को तलाक हो जाती है उसकी शादी होना ही मुश्किल हो जाता है, वो एक मुसीबत ही बन जाती है। तो इस तरह की चीज़ें समाज के अंदर काफ़ी तकलीफ़देह होती हैं। तो एक औरत जिसके कबीले का निज़ाम ये है या पूरे माशरे का, कि उसको बाहर विरासत में तकसीम हो जाना, तो वो औरत बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो उसको अल्लाह ताला ने रोक दिया कि ये जुल्म नहीं होना चाहिए, औरतों की अपनी आज़ादी कायम रहनी चाहिए, वो अपने मियाँ के फौत होने के बाद अपने लिए जो रास्ता चाहें वो इख्तियार कर सकें। हाँ, एक और होता था कि अगर मैयत फौत हो गई है और किसी के मुतालबे से पहले पहले अगर वो बेवा जो है वो अपने मेके चली जाती है तो बच जाएगी, ये भी था उसमें, वगरना वो पकड़ी गई, मारी गई बेचारी। तो ये सारी रस्में जो थी वो तोड़ दी एक सिर्फ एक जुमले ने, कि अंतारिस निसा करहन, कि तुम अपनी औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में तकसीम ना कर लिया करो। आगे फरमाया वला ताज़ुलू हुन्ना, अब शुक्र है हमारे यहाँ ये रस्म नहीं है, जिन इलाकों में होगी वो कुरान मजीद के इस पैगाम पे अमल करें, ये बहुत कबीरा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। वला ताज़ुलू हुन्ना लितज़हबू बिबाज़ मा आतैतुमू हुन्ना, दूसरा ये कि तुम जो ताज़ुलू हुन्ना है इसका मतलब है किसी को दूसरी जगह शादी करने से रोक देना, और दूसरा मतलब ये होता है किसी औरत को दूसरी जगह शादी करने से रोक देना, और एक ये कि उनको अपनी मर्जी ना करने देना, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है, तो दोनों मानी के अतबार से जुमले को समझ लीजिए। फला ताज़लूहुन्ना, औरतों को अपनी मर्ज़ी करने से ना रोको, ले तज़हबू बेबाज़ मा आतई तुमुहुन्ना, सिर्फ इसलिए कि तुमने जो कुछ उनको दे रखा है वो उनसे छीन सको, उनको उनसे ले सको। तो मिसाल के तौर पर एक केस ये हो सकता है कि मैंने अपने वालिद की बेवा को दूसरी शादी नहीं करने दे रहा, अपने वालिद की बेवा को दूसरी शादी नहीं करने दे रहा, क्योंकि जो वरासत में वालिद साहब की जायदाद में से उनको हिस्सा मिला है सौतेली वालदा को, वो तो लेकर चली जाएगी, तो इसलिए मैं उसकी शादी नहीं कर रहा, रुकावटें डाल रहा हूँ अपनी सौतेली माँ के लिए, रुकावटें डाल रहा हूँ कि वो कहीं शादी ना कर ले। एक केस ये है। दूसरा केस ये होता है कि शोहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, इकट्ठे रह नहीं पा रहे, कोई ना जहनी मुनासिबत है, ना जिस्मानी मुनासिबत है, ना ज़ौकी मुनासिबत है, बस इसलिए तलाक नहीं दे रहा कि ये सब कुछ ले जाएगी जो कुछ अल्लाह ने इसको दिया, मैंने दे दिया इसको, क्योंकि कुरान के अल्फाज हैं कि तुम उनको ना रोको इसलिए कि तुम उनको जो कुछ उनको दिया है वो तुम ले सको। तो एक आदमी ने अपने शादी जब की तो हक मेहर दिया, कुछ तोहफे तहाइफ दिए हुए थे, कुछ चीज़ें उसको दे दी, कोई जेवर दिया, कोई कपड़े दिए, कोई खाना पीना खिलाया, और अब वो इसलिए तलाक नहीं दे रहा कि कहीं ये सारी चीज़ें लेकर चली जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इस वजह से अपनी औरतों को ना रोको सिर्फ इसलिए कि तुम उसमें से ले जा सको, इल्ला यातीना बेफाहिशतिन मुबैन, सिर्फ इस सूरत में तुम्हारे लिए जायज़ है कि वो खुली खुली फाहशी का इर्तकाब करते हैं, मुबैना, और वो साबित भी हो जाए। मुबैना का लफ्ज़ जो है ये बहुत अहम है, यहाँ पर इल्ज़ाम लगाकर नहीं होना चाहिए, जुर्म साबितशुदा होना चाहिए। तो मुबैना का मतलब है जिस पर दलील आ गई हो, जिस पर सबूत आ गया हो। तो फरमाया कि तुम अपनी औरतों को इसलिए ना रोको अपनी मर्जी करने से, या उनको दूसरी जगह तलाक देकर शादी कर लेने से, कि कहीं इसलिए कि तुम जो कुछ उनको दे रखा है वो उनसे वापस लो, सिर्फ इस चक्कर में कि उसको रोक लो। हाँ, इस सूरत में तुम रोक सकते हो, उनको दी हुई चीज़ें वापस ले सकते हो कि अगर वो खुली खुली बदकारी कर दे जो साबित शुदा हो जाए। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ हुस्ने सलूक के साथ रहो। ये आयत बहुत अहम है, कम से कम पाकिस्तानियों के लिए, बाकी दुनिया के लोगों को मैं नहीं वाकिफ, लेकिन पाकिस्तान में अपनी बेगमात के साथ अच्छे सलूक नहीं होते। तो फरमाया वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, उनके साथ मारूफ तरीके के मुताबिक मुआमला करते रहो, मुआशरत करते रहो, जो उनके जिस्मानी पेट के जहन के उनके ज़ौक के जो भी तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे, उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी, उनको धक्के नहीं दिए जाएंगे, उनके खाना बंद नहीं किया जाएगा, उनको घर में बंद नहीं किया जाएगा, उनको अपने बहन भाइयों के साथ मिलने से रोका नहीं जाएगा। जो चीज़ें हमारे यहाँ, मसलन हमारे यहाँ जो देहाती किस्म के लोग हैं, खैर शहरों में पाए जाते हैं, सिर्फ देहाती नहीं है जी, मैंने पिछले 15 साल से अपनी बीवी को अपने भाई के घर नहीं जाने दिया, वो फ़ख्र से बयान कर रहे होते हैं कि मैं कितना ज़बरदस्त शौहर, तो असल में आपने कबीरा गुनाह किया है, उसको सिलह रहमी से रोक रखा है कि वो अपने भाई के घर ही नहीं जा पा रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो फरमाया कि आशिरु होना, उनके साथ रहन सहन करो, आशिर आशिर का मतलब होता है रहन सहन करना, मुआशरा इसी से निकला हुआ है कि बाहम एक दूसरे के साथ मिलकर हम रहते हैं, तो उनके साथ मारूफ तरीके का, भले तरीके का, अच्छे तरीके का बर्ताव करोगे तो। फाइन करे तुम हुन्ना, तो अगर वो तुम्हें नापसंद हो, मतलब बहुत अहम बात है, फाइन करे तुम हुन्ना, अगर वो तुम्हें नापसंद हो, ये शादी के वक्त बाज़ पसंद होती है, बाद में नापसंद हो जाती है, बाज़ हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं, माँ बाप करवाते हैं, वहाँ पहले दिन से ही ये केस हो सकता है कि वो पसंद नहीं है। तो फरमाया कि अगर तुम्हें वो पसंद ना हो, फ़असा अन तकरहु शैयन, तो इस बात का इम्कान है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करो, वजाजरुल्लाहु फीही खैरन कसीरा, जबकि अल्लाह ने उस चीज़ में तुम्हारे लिए बहुत भला रखा हो, तो इसलिए तुम नापसंदीदगी के बावजूद उनके साथ हुस्ने सलूक करते रहोगे। अब पूरी बात को मिलाकर देखिए जो इस आयत में है, आयत नंबर 19 में, कि फरमाया कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में मुंतकिल नहीं करोगे, कि बाप मर गया है तो उसकी बेवा जो औरतें हैं वो आपस में बांट लो, उनको अपनी मर्जी करने दो। दूसरा ये हुक्म दिया कि तुम अपनी बीवियों को सिर्फ इसलिए कि जो कुछ उनको दिया हुआ है उसको रोकने के लिए तुम अपने पास नहीं रख सकते, कि तलाक ही नहीं दे रहे, और अगर तुमने रखा हुआ है तो फिर हुस्ने सलूक करोगे, यानी नापसंदीदगी के बावजूद अगर तुमने रखा हुआ है उनको और नहीं चाह रहे कि वो सब कुछ लेकर चली जाए, तो इस सूरत में अगर तुमने रखना है तो फिर हुस्ने सलूक करोगे, हर हर पहलू से मारूफ तरीके पर चलोगे, उनके साथ नाइंसाफी, बेइज्जती, डांट डपट ये कुछ नहीं होगा। वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तो ये केस, यानी ये जो आशिरूहुन्ना बिल मारूफ है, इसी जमन में चल रहा है कि पसंद नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ दे दिया हुआ है, तो जनरलाइज भी हो जाएगा, लेकिन पहला इसका मफहूम यही है कि अगर इस तरह की खातून, इस तरह की शादी हो गई हुई है कि अब दिल भी नहीं लग रहा, एक दूसरे को पसंद भी नहीं कर रहे, लेकिन छोड़ने को भी आमादा नहीं है, तो लटका के रखा हुआ है, ना कोई खाना मिल रहा है, ना कोई पीना मिल रहा है, या कदम कदम पे बेइज्जती हो रही है, तोहीन हो रही है, हकूक अदा नहीं हो रहे हैं, तो ये गलत बात होगी। पूरे हकूक अदा करने हैं, और अगर नहीं है तो पसंद नहीं है तब भी हकूक अदा करने हैं, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इसमें से बहुत बड़ा खैर बरामद कर देगा। आगे अब ये फैसला है कि अगर तुमने छोड़ने का फैसला किया तो फिर क्या करना है, तो वो इंशाल्लाह अगले कोशिश में देखेंगे। यहाँ पे रोक लेते हैं। वहाँ अलहमदिल्ला।